आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
हेलो, गुड इवनिंग। 29 मार्च बुधवार का दिन भर है ये। मेरा नाम नितिन ठाकुर। कर्नाटक में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। 10 मई को वोट डाले जाएंगे और इस बार कर्नाटक चुनाव में कौन से मुद्दे हावी हैं, बीजेपी कांग्रेस के लिए क्या दांव पर लगा है, ये बताएंगे। 2 हफ्तों से पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा अमृतपाल सिंह क्या सरेंडर करने वाला है, ऐसी खबरें आज आ रही थीं। एक रिकॉर्डेड वीडियो भी सामने आया है उसका। इस मामले में अपडेट लेंगे। दिल्ली में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के सुरक्षा सलाहकारों की आज बैठक हुई है। किन देशों की भागीदारी रही और एजेंडा क्या रहा। और 1 अप्रैल 2023 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है, कई नियम बदलने जा रहे हैं। 2000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांजेक्शन भी महंगे होने की बात हो रही है, लेकिन इसमें कुछ पेंच भी है, इसे समझना है। और आखिर में आएगा भौचक, लेकिन फिलहाल सुनते हैं 60 सेकंड हेडलाइंस कुमार के।
शुक्रिया नितिन। पुलिस के शिकंजे से दूर वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल सिंह ने जारी किया वीडियो, कहा सरकार की मंशा सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं। जयपुर सीरियल ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी, जिला कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा, हाई कोर्ट ने पलटा फैसला। सदस्यता जाने के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस सांसदों की बैठक में हुए शामिल। कर्नाटक में 10 मई को होगा विधानसभा चुनाव, 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। SCO बैठक में अजीत डोभाल ने आतंकवाद को बताया खतरा, मीटिंग में वर्चुअली जुड़े पाकिस्तान और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पुणे से बीजेपी सांसद गिरीश बापट का निधन, लंबे समय से थे बीमार। सहारा निवेशकों को वापस मिलेंगे पैसे, जब्त रकम से सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किए 5,000 करोड़। भारत में एक दिन में आए कोविड के 2151 नए मामले, 5 महीने में सबसे ज्यादा केस आए सामने। और रूस का ऐलान, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर फोर्स की जानकारी नहीं करेगा साझा।
आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। कर्नाटक चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। 10 मई को वोट डाले जाएंगे, 13 मई को गिनती होगी। विधानसभा की 224 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज ये भी बताया कि नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल है और नाम वापस लेने की तारीख है 24 अप्रैल। इस ऐलान के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर कुछ जरूरी जानकारियां और इसका बैकग्राउंड आपको बताता हूं, फिर इसके मुद्दे और पार्टियों की स्थिति पर भी बात करेंगे। तो कर्नाटक में इस बार करीब 5,21,00,000 वोटर वोट डालेंगे और 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटर घर बैठे ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 2018 में कांग्रेस और JDS ने मिलकर यहां सरकार बनाई थी, HD कुमारस्वामी CM बने थे, लेकिन 14 महीने बाद ही आपको याद होगा ये सरकार गिर गई थी। BS येदियुरप्पा ने कांग्रेस से छटके विधायकों को अपने साथ जोड़कर BJP की सरकार बनाई थी। हालांकि BJP के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य में CM बदलने का फैसला किया था और 2 साल बाद येदियुरप्पा को भी पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद बसवराज बोम्मई BS येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी चुने गए थे। आज चुनाव की डेट अनाउंस होने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि BJP एकदम तैयार है।
BJP is always ever ready party. We don't prepare for election. We prepare for organization and we prepare for welfare of the people and we are ready.
तो BJP दावा कर रही है कि उसकी चुनावी तैयारी एकदम पूरी है, बाकी पार्टियां कितनी तैयार हैं और इस बार चुनाव में किन मुद्दों का जोर है, ये हमने पूछा बेंगलुरु में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर सागर राज से।
ठीक है, BJP का नैरेटिव्स बहुत ज्यादा है। पहले उन लोगों ने पोलराइजेशन का नैरेटिव सेट किया था जब उनका स्टेट प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटिल ने बोला था ये इलेक्शन सावरकर का और टीपू सुल्तान का बीच है, ये इलेक्शन लव जिहाद के बारे में है और बहुत बहुत कुछ उन्होंने बताया था। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु और कर्नाटका में आने के बाद बहुत ज्यादा नैरेटिव चेंज हो चुका है। जब प्रधानमंत्री ने डेवलपमेंट के बारे में बात किया था, जब प्रधानमंत्री ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वर्क को लॉन्च किए थे कर्नाटक में, अभी 2 दिन पहले जो कैबिनेट में जो डिसीजन हुआ था BJP का, उससे पता चल रहा है कि वापस BJP पोलराइजेशन के ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि उस कैबिनेट डिसीजन में रिजर्वेशन के बारे में डिसीजन लिया था जहां पे जो रिजर्वेशन ओबीसी में मुस्लिम को ओबीसी के अंदर 4% का वो रिजर्वेशन मिल रहा था, उसको हटा के वो 4% को वक्कलिगा और लिंगायत कम्युनिटी, याद रखिए लिंगायत कम्युनिटी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वोट बैंक फॉर बीजेपी है, और उनको अपीस करने के लिए वो मुस्लिम से हटा के लिंगायत को दिया गया था। सो इससे पता चल रहा है कि बीजेपी अभी भी पोलराइजेशन के ऊपर ही है, और जिनका वोट उनको चाहिए उनके लिए बहुत ज्यादा रिजर्वेशन का परसेंटेज दिया गया था। फिलहाल के लिए बीजेपी पोलराइजेशन के ऊपर ही इलेक्शन का इलेक्शन लड़ने का इरादा रखा है। और कांग्रेस को देखा तो कांग्रेस बीजेपी के ऊपर करप्शन के ऊपर अटैक कर रहा है, 40% का गवर्नमेंट करके अटैक कर रहा है, और डबल इंजन सरकार जो कर्नाटका में है वो करप्टेड गवर्नमेंट करके टारगेट करके रखा है। याद रखिए 40% सीएम है, पीसीएम कैंपेन शुरू किया था, वो कैंपेन बहुत अग्रेसिव था कांग्रेस का ऑनलाइन कैंपेन, और ये हर एक गली बेंगलुरु में और हर एक गांव को पहुंचा हुआ है, और ये कैंपेन बहुत अग्रेसिव है और इंपैक्ट भी हुआ है बीजेपी के ऊपर। सो सूत्रों के अनुसार जो इंटरनल सर्वे किया गया है बीजेपी पे, उससे पता चल रहा है कि उनका नंबर थोड़ा कम आ रहा है, ग्राफ और ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, इसलिए दे आर क्वाइट रिलक्टेंट अबाउट दिस इलेक्शन।
सागर, बीजेपी की पूरी इलेक्शन मशीनरी जो है वो चुनाव में लगी है, खुद पीएम मोदी और अमित शाह ताबड़तोड़ दौरे भी कर रहे हैं। कांग्रेस के लिहाज से अगर देखें तो इसके प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य है ये, जेडीएस भी एक अहम प्लेयर है, तो इन पार्टियों के लिए दांव पर क्या लगा है?
नहीं, अभी प्रेजेंट कर्नाटका गवर्नमेंट में देखेंगे तो बीजेपी का स्टेक ज्यादा है, मगर आने वाले इलेक्शंस में उनका स्टेक बहुत कम होने का चांसेस है, मगर इलेक्शन का अभी 40 दिन का टाइम है, इसके बीच कुछ कुछ नया प्लान कुछ और हो गया तो चेंजेस होने का संभावना है बीजेपी के ऊपर। अभी स्टेक फिलहाल के लिए इस इलेक्शन पे आज तो इस डेट पे देखा तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा है, मेजर पार्टी हो सकती है मगर मेजोरिटी को मेजोरिटी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैजिक नंबर है 113 मिलना बहुत मुश्किल है, और कर्नाटका का हिस्ट्री भी हम जानते हैं इतिहास के अनुसार कभी भी तीनों पार्टी को जेडीएस कांग्रेस और बीजेपी को मेजॉरिटी मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। 2013 में जब कांग्रेस को मेजॉरिटी मिला था उस टाइम पे येडियुरप्पा बीजेपी में नहीं थे, उन्होंने केजेपी का पार्टी ज्वाइन किया था, उसके वजह से बीजेपी का बहुत कम नंबर्स आया था, मगर अभी ऐसा नहीं है, येडियुरप्पा बीजेपी के साथ है, तो वो इलेक्शन में नहीं कंटेस्ट कर रहे फिर भी उनके साथ है, मगर स्टेक देखा तो कांग्रेस का ज्यादा है, सेकेंड होगा बीजेपी और उसके बाद जेडीएस।
अच्छा, कर्नाटक में बीजेपी जो है वो सत्ता में वापस नहीं लौटती है, तो क्या इस बार ये वाला जो रिवाज बना हुआ है वो टूटेगा, या फिर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखने को मिल रहा है?
एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है और करप्शन का चार्जेस का फैक्टर भी है बीजेपी के ऊपर, इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अग्रेसिव कैंपेन कर रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया सागर। आज वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने जमीन आसमान एक कर रखा है, लेकिन अमृतपाल अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। बीच बीच में तस्वीरें आ रही हैं, सीसीटीवी फुटेज देखने को मिल रहे हैं। आज अचानक एक और खबर आई कि अमृतसर में अमृतपाल सिंह सरेंडर कर सकता है, इसके बाद पुलिस के एक्शंस बढ़ गए। इस बीच अमृतपाल सिंह का एक वीडियो मैसेज सामने आया जिसे उसने फेसबुक पर लाइव किया है। अमृतपाल ने उसमें कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और सरकार ने मजबूर लोगों को जेल में डाल रखा है,
पर सरकार ने जो रवैया अपनाया उन्होंने लखा की फोर्स ला के घेरा पा के जो गिरफ्तार करने की कोशिश की, उस घेरे चो सतगुरु सच्चे पातशाह ने बड़ी कृपा करके सानू कढ़िया। सानू उस मौके तक यह लगता सी भी सरकार सानू माल विच नहीं जान देना चाहती तां जो असीं विहीर ना शुरू कर सकीए।
तो अमृतपाल को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, पुलिस और इंटेलिजेंस की पकड़ से कैसे वो बार बार बच निकल रहा है, ये हमने पूछा पंजाब में होशियारपुर है वहां पर हमारे आज तक रेडियो रिपोर्टर हैं सत्येंद्र चौहान, उनसे।
देखिए, जो अभी लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक अमृतपाल, जिसके बारे में लगातार ये कहा जा रहा था कि वो पंजाब से बाहर है, कभी हरियाणा में दिखा, कभी दिल्ली में दिखा, कभी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दिखा, अंततः वो जो है अब पंजाब में आ चुका है, पुख्ता प्रमाण है। और उसके अलावा उसने अभी हाल ही में एक वीडियो भी जारी किया है और उस वीडियो में उसी तरह की भाषा और भाषण का इस्तेमाल किया है जिसमें वो लोगों को भड़काने का काम करता था। और इस वीडियो के माध्यम से उसने एक बार फिर से पुलिस तंत्र को चुनौती दी है और उसने एक बार फिर से लोगों को भड़काने का काम किया है। साथ ही सरबत खालसा बुलाने की उसने बात की है और साथ ही कौम के नाम जिस तरीके से संदेश देते हैं उसने लोगों से जागरूक होने की बात कही है, उसके हक में खड़े होने की बात कही है। तो अभी भी अमृतपाल कहीं ना कहीं पुलिस को चुनौती दे रहा है, पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखा रहा है। और उस वीडियो में वो कहता है कि मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ और पूरी पुलिस चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर ले। तो इसका मतलब ये है कि अमृतपाल अभी भी कहीं किसी भी तरीके से नरम नहीं हुआ है, बल्कि जिस तरह के तेवर वो अपना रहा है उससे लग रहा है कि पुलिस को वो अभी भी ठेंगे पर रख रहा है और सीधी चुनौती दे रहा है। रही बात इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस इनपुट कल ये था कि वो पंजाब में आ गया है होशियारपुर में, और होशियारपुर में उसकी लोकेशन भी थी, वहां से वो भाग गया था। और उसके बाद इनपुट ये आया कि अमृतपाल किसी भी गुरुद्वारे में, सबसे पहले अमृतसर गोल्डन टेम्पल का ख्याल आया कि वहां पर जाकर वो सरेंडर कर सकता है, क्योंकि उसकी जो मोटस ऑपरेंडी है वो दरअसल लोगों के दिमाग से खेलता है, उनको भड़काने का काम करता है। तो अमृतसर गोल्डन टेम्पल में एक साथ में हजारों लोगों की भीड़ होती है, तो ये कहा जा रहा था कि वो गोल्डन टेम्पल में जाकर सरेंडर कर सकता है और लोगों को एक बार फिर से प्रोवोक कर सकता है। और पुलिस ने अमृतसर में चप्पे चप्पे पर उसके पोस्टर चिपका दिए, हजारों की तादाद में सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। फिलहाल अमृतपाल कहाँ है ये पहली बनी हुई है, लेकिन उसने वीडियो जारी किया है और ये वीडियो भी 24 घंटे पहले रिलीज किया गया है, क्योंकि अकाल तख्त के जत्थेदार ने जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था वो कल की बात है, तो इसने उसका भी जिक्र किया है। तो जाहिर सी बात है ये वीडियो बिल्कुल नया है, और वीडियो के माध्यम से ये देखो कि उसके साथ उसको लॉजिस्टिक हेल्प कराने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं और वो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहा है।
सत्येंद्र, अमृतपाल भागने के लिए किस तरह के हथकंडे अपना रहा है, कौन उसकी मदद कर रहा है, ये कुछ जानकारी आपके पास है?
देखिए, महिला नेटवर्क का इस्तेमाल उसने किस तरीके से किया है उसका जीता जाता उदाहरण ये है कि जब वो नंगल अंबिया गुरुद्वारे से भागा तो उसके बाद सीधा पटियाला गया, पटियाला से एक महिला की स्कूटी उसने ली, उस स्कूटी से वो कुरुक्षेत्र के शाहबाद में गया, और फिर वहां पर जो बलजीत कौर है जिसकी उम्र 40 साल है वो अपना फोन फ्लाइंग एयरप्लेन मोड पे करके उस स्कूटी को वापस पटियाला देने जाती है। तो यहाँ पर ये जो दो तीन कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश हुए हैं उसमें साफ हो रहा है कि वो महिलाओं का सहारा ले रहा है, और जब महिलाओं का सहारा ले रहा है तो इससे एक चीज और साफ होती है कि वो महिलाओं के संपर्क में पहले से था, और जैसा कि उसकी पुरानी हिस्ट्री भी निकल कर आई है, उसकी पुरानी चैट, उसके पुराने वॉइस मैसेजेस जिनमें वो महिलाओं से बात कर रहा है, महिलाओं के बारे में बात कर रहा है, तो ये साफ हो गया है कि वो एक महिला नेटवर्क के जरिए ही अपना खेल खेल रहा था।
अच्छा, अमृतपाल गुरुद्वारे में क्यों सरेंडर करना चाहता है और पुलिस के सामने चैलेंजेस क्या हैं?
देखिए, पुलिस के लिए फिलहाल अब चुनौती ये हो गई है कि एक तरफ अमृतपाल को पकड़ना है, और दूसरी उससे बड़ी चुनौती ये है कि कहीं अमृतपाल जैसा कि सोच रहा है और जिस तरह की स्ट्रेटेजी वो बना रहा है कि वो पुलिस में थाने से पहले किसी गुरुद्वारे में जाकर सरेंडर कर दे, अगर वो सरेंडर कर देता है तो अभी तक जो उसकी इमेज खराब हुई थी तो वो इमेज उसकी दोबारा बनने लगेगी। अगर उसकी इमेज द्वारा बनती है तो जो उसके सिंपेथाइजर थे, जो उसके प्रति सहानुभूति रखते थे, वो लोग एक बार फिर से एक्टिव हो जाएंगे। अगर वो लोग एक्टिव होते हैं तो फिर वो लोग उसके समर्थन में खड़े हो सकते हैं, जैसा कि पहले जब इसको गिरफ्तार करने से पहले पुलिस ने धारा 144 लगाई थी, इंटरनेट बैन कर दिया था, तो वो सब ये कोशिश थी कि अमृतपाल के समर्थन में लोग खड़े ना हो। लेकिन अब जिस तरीके से उसने वीडियो मैसेज जारी किया है और जिस तरीके से वो सिखों का एक आगू जिसे कहते हैं अगुआ बनने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर वो पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले सरेंडर कर देता है और खासकर लोगों के बीच में सरेंडर करता है तो वो एक हीरो वाली इमेज यहाँ पर बना सकता है। पुलिस के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती मौजूदा समय में है।
बहुत शुक्रिया सत्येंद्र। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संगठन जो दुनिया की करीब 40% आबादी को कवर करता है। भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 8 देश इसके मेंबर हैं और इस दफा भारत ने समिट की कमान संभाली है। इसी कड़ी में आज नई दिल्ली में SCO देशों के NSAs की बैठक हुई। पाकिस्तान के मीटिंग में आने पर संशय था, लेकिन वो शामिल हुआ मगर वर्चुअली। इसमें एक नाम चीन का भी था। मीटिंग की शुरुआत NSA अजीत डोभाल ने की और आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। जानकार कह रहे हैं कि अजीत डोभाल का इशारा चीन और पाकिस्तान की तरफ था, जिनके साथ भारत के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। बैठक के दौरान भारत का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर भी जिक्र रहा, इस पर हम आगे बात करेंगे। इससे पहले 21 मार्च को SCO के एक सेमिनार में पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ था। सम्मेलन से पहले पाकिस्तान ने एक मैप जारी करके जम्मू कश्मीर को अपने देश का हिस्सा बताया था। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि या तो पाकिस्तान सही मैप दिखाए या मीटिंग में ना आए। इस विवाद के बाद पाकिस्तानी डेलीगेशन ने सेमिनार से दूर रहने का ऑप्शन चुना। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत ने अपना न्योता वापस ले लिया था। SCO की अगली अहम बैठक 27 से 29 अप्रैल को दिल्ली में होगी, जहां SCO देशों के रक्षा मंत्री शामिल होंगे। तो सबसे पहले आज की SCO बैठक का हासिल जानते हैं। हमने पूछा इंडिया टुडे टीवी में फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से।
देखिए, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग है, वो समिट से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग है और सिक्योरिटी लेवल मीटिंग है, उसके तहत हो रहा है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के लीडरशिप के अंदर अपने स्टेटमेंट में, अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही उन्होंने कुछ मुद्दों को आगे रखा और हाईलाइट। पहली बात उन्होंने कहा कि जो SCO रीजन है वो काफी सारे चैलेंजेस थे। उन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कुछ मुद्दों को आगे रखा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि SCO रीजन जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस थे इनफैक्ट, और इन चैलेंजेस को इनको साथ मिलकर इनका हल ढूंढना। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने आगे रखी, वो पाकिस्तान के रहते हुए, पाकिस्तान रोजी भी शायद थे लेकिन थे तो कमरे में, उनके आगे उन्होंने कहा कि टेररिज्म यानी कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसी भी फॉर्म और किसी भी मैनिफेस्टेशन में, और जिसमें फाइनेंसिंग की बात करें या फिर सपोर्ट की बात करें, इन सारे जो फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन में आतंकवाद से लड़ना होगा, और जो सबसे बड़ा थ्रेट है इस रीजन में वो आतंकवाद का है। उन्होंने ये भी कहा कि UNSC रेजोल्यूशन के तहत जो आतंकवादियों को या आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट करना होता है, वहां पे अगर सैंक्शन इंस्ट्रूमेंट नहीं करते हैं, और कुछ देश ये चीन को देखते हुए कुछ देश अगर प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे देशों को और ऐसे आतंकवादियों को जो किसी स्टेट रिस्पॉन्सर्ड है पाकिस्तान प्रेजेंट का, तो वो भी गलत है। अगर SCO को कामयाब होना है एज अ फोरम, तो काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी मैटर्स सबसे ज्यादा ऊपर होना चाहिए। अपने की प्रायोरिटी में उन्होंने ये भी कहा कि वो एक साथ खड़े होकर कनेक्टिविटी पर काम करना चाहते हैं, और एक कंसल्टेटिव, ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेट यानी कि जहाँ पे हर देश हिस्सा बने उस पूरे प्रोग्राम का, और बड़े ट्रांसपेरेंट और कंसल्टेटिव मैनर में वो काम हो। एक और अहम बात जो उन्होंने कही, क्योंकि भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कहा कि SCO में जितने भी देश हैं उनको आगे वाले देश का सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये फिर से वही बात है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इंडिया में ट्रांसग्रेशन करता है उसको लेकर, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि कैसे कोई थर्ड कंट्री यानी कि चीन अपने प्रोजेक्ट BRI प्रोजेक्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू चलाता है, जो बहुत ही गलत है। वो कह रहे हैं कि भारत के टेरिटोरियल किसी भी देश की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ऑनर करना चाहिए। ये हुई उनकी अपने एजेंडा की बात।
गीता जी, अजीत डोभाल ने मीटिंग के दौरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जिक्र किया, जिसे भारत मजबूत करेगा। तो INCTC भारत की सिक्योरिटी में क्या रोल प्ले करता है?
देखिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट और या तो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसे कहते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए और रशिया के लिए। जहाँ एक तरफ आप देख रहे हैं कि रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, हम यहाँ पे हमेशा मैं ये कहती हूँ कि हम यहाँ रशिया का अग्रेशन या इन्वेजन को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में आइसोलेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक मूव होता है। तो वेस्ट इस रशियन अग्रेशन को लेकर जिस तरीके से रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें SCO फोरम में कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर ले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो ये रशिया से लेके पूरे वेस्ट एशिया आपको कनेक्टिविटी नजर आएगा, और जिस ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, उस ग्लोबल साउथ अगर रशिया जो एक यूरोपियन यूरेशियन कंट्री है वो कनेक्ट हो जाए भारत के लिए चाबहार पोर्ट यूज हो, तो उससे बेहतर इकोनॉमिकली कोई और इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट भारत के लिए इस एससीओ फोरम में रीजनल कनेक्टिविटी के नजर नहीं आता। अगर चाबहार कामयाब हो जाता है तो भारत के लिए ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया को अप्रोच करना और अफगानिस्तान में पहुंचना बिना पाकिस्तान की मदद से बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है। तो इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए कनेक्टिविटी पर बहुत बात होती है एससीओ में, और उस कनेक्टिविटी में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक बहुत अहम हिस्सा है।
बहुत शुक्रिया गीता। यूपीआई के इस्तेमाल ने मनी ट्रांजैक्शन की दुनिया आसान बना दी है। नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत से जूझ रही जनता ने डिजिटल पेमेंट को हाथों हाथ लिया और साल दर साल इसका इस्तेमाल करने वालों की तादाद अब जो है बढ़ती जा रही है। पिछले साल 7,400 करोड़ बार यूपीआई के जरिए ट्रांजेक्शन हुए हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक सर्कुलर कल से घूम रही है और इसमें कहा गया है कि यूपीआई के जरिए 2,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर 1.1% प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लगाया जाएगा, जो मर्चेंट ट्रांजेक्शन यानी कि व्यापारियों को पेमेंट करने पर देना होगा। यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा और 30 सितंबर 2023 से पहले इसकी समीक्षा की जाएगी। इस कहानी की कुछ चीजें हैं जो आम इंसान को कंफ्यूज कर रही हैं या उन्हें समझना आसान नहीं है, तो इस पर हमने बात की मोबीक्विक पेमेंट ऐप की को फाउंडर और सीईओ उपासना रूपकृष्ण टाकू से। सबसे पहले तो उपासना, अगर आप आसान भाषा में समझा सकें, ये जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है पीपीआई, ये है क्या और ये जो चार्ज लगने वाला ये किस पर लगेगा?
देखिए, ये बहुत ही आसान सी बात है। पीपीआई का फुल फॉर्म है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट ये आरबीआई की टर्मिनोलॉजी है। मान लीजिए आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए तो मुझे आपका केवाईसी करना है, आपका आधार पैन वगैरह सब चेक करना है, उसके बाद ही मैं आपको वॉलेट इश्यू करूंगी। जैसे कि मोबीक्विक आपको वॉलेट इश्यू करेगा, तो वो आपका अब एक प्रीपेड वॉलेट बन गया। अब ये प्रीपेड इसलिए है क्योंकि इसमें पहले से पैसे नहीं है, ये बैंक अकाउंट नहीं है। अब आप इसमें पैसे ऐड करेंगे, आप पैसे अपने बैंक अकाउंट से ऐड कर सकते हैं, अपने वॉलेट में आप पैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ऐड कर सकते हैं, यूपीआई से ऐड कर सकते हैं, लॉयल्टी पॉइंट से ऐड कर सकते हैं, कई प्लेटफॉर्म्स पे कैशबैक्स और इंसेंटिव्स भी वॉलेट में मिलते हैं। देखिए, अभी जो इंडिया में जो पेमेंट्स की जो मार्केट है ऑनलाइन भी और फिजिकल वर्ल्ड में भी, उसमें दो तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई ट्रैवल ऐप या फूड डिलीवरी ऐप या वेबसाइट पे हैं, तो वहां पे आपके पास बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस हैं। आप यूपीआई से पे कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं और वॉलेट से भी पे कर सकते हैं। और ये जो नया आरबीआई का रूल्स और गाइडलाइंस आए हैं, वो स्पेसिफिकली क्यूआर कोड बेस्ड मॉडल के लिए हैं। और क्यूआर कोड्स जो आपको भारत में हर जगह दुकानों में लगे हुए आजकल दिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई क्यूआर कोड था जो एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक ने लगाया है, तो मोबीक्विक के यूजर या हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके जो यूजर्स हैं, जब वो अपनी ऐप से स्कैन करके पे करते थे तो पेमेंट सिर्फ उनके बैंक अकाउंट यानी कि यूपीआई से हो पाती थी। अब ये हो पाएगा कि वो मोबीक्विक वॉलेट से भी पेमेंट कर पाएंगे, वो पेटीएम वॉलेट से भी पेमेंट कर पाएंगे, तो वॉलेट बैलेंसेस से भी पेमेंट हो पाएगी। तो जो आप टैक्स की बात कर रहे थे, वो पेमेंट चार्ज जो लगेगा वो 2,000 रुपए से ऊपर की ट्रांजेक्शन पे लगेगा अगर कोई यूजर वॉलेट से यूपीआई क्यूआर कोड पे करेंगे, और वो भी चार्जेस यूजर को नहीं लगेंगे, वो मर्चेंट को लगेंगे।
उपासना, अगर हम इस पेमेंट इकोसिस्टम की पूरी बात करें तो ये जो चार्ज है उससे सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा, मतलब मर्चेंट्स पर या फिर जो कंज्यूमर है उस पर, किसे सबसे ज्यादा असर होने वाला है इसका?
इसके बारे में मैं ये समझाना चाहूंगी कि इसमें किसी का नुकसान नहीं है। नुकसान क्यों नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो दुकानदार है मर्चेंट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मर्चेंट्स के यहाँ पे कोई भी आ रहे थे वो कैश से पे कर रहे थे, कार्ड से पे कर सकते हैं या यूपीआई क्यूआर से अभी तक पे कर पा रहे थे। अब जो छोटे शहरों में कई सारे छोटे दुकानदार हैं या बड़े शहरों में भी जो छोटे दुकानदार हैं, उनके पास कोई कार्ड मशीन नहीं है, कोई पॉस मशीन नहीं है, तो वो कार्ड्स तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो तो मान लीजिए उनके पास कोई यूजर आ रहे हैं जो अपने कार्ड बैलेंसेस यूज करना चाहते हैं या वॉलेट बैलेंसेस यूज करना चाहते हैं, तो उन मर्चेंट्स के पास कोई तरीका ही नहीं था उनकी डिजिटल पेमेंट लेने का। मान लीजिए कि मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं और मुझे चीज खरीदनी है 15,000 की, तो मेरे पास है क्रेडिट कार्ड या मेरे पास है कोई क्रेडिट प्रोडक्ट, तो लेकिन मैं वो यूज ही नहीं कर पा रही थी बिकॉज वो सिर्फ यूपीआई क्यूआर कोड था। अब क्योंकि वो यूपीआई वॉलेट इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड है, तो ये यूजर इस क्यूआर कोड पे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, जहां की जो बैलेंस वो अपने बैंक अकाउंट से खींचना चाहते हैं वो वहां से यूज हो जाएगा। अगर वो कुछ अमाउंट ट्रांजेक्शन का अपने कार्ड से वॉलेट में लाके यूज करना चाहते हैं या कोई क्रेडिट प्रोडक्ट से लाके यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। तो इससे मर्चेंट के बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मान लीजिए मैं अपने प्राइमरी सेविंग्स अकाउंट से कुछ रुपए, कुछ हजार रुपए, कुछ 3,000-4,000 रुपए अपने वॉलेट में रखूं और अपने रोजमर्रा की पेमेंट्स मैं अपने वॉलेट के थ्रू करूं, तो मेरे बैंक अकाउंट में इतने सारे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन नहीं आ रहे हैं और हर ट्रांजेक्शन के लिए मेरे को अपना बैंक ओटीपी अपने फोन में एंटर नहीं करना पड़ रहा है। तो एक ये सहूलियत हो रही थी। दूसरी सहूलियत ये हो रही है कि जो हमारे जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं उनको जो इतने सारे स्मॉल टिकट ट्रांजेक्शन हिट कर रहे थे उनके सिस्टम्स को, जिससे कि बहुत सारा एफिशिएंसी और स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन पे फर्क पड़ रहा था, वो नहीं होगा। इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बोलूं तो फिनटेक इकोसिस्टम या पेमेंट इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छी खबर है कि अब 2,000 रुपए से ऊपर की वॉलेट ट्रांजेक्शन जो क्यूआर कोड्स पे होंगी उसपे उनको कुछ रेवेन्यू 1.1% का। बिकॉज देखिए, रेवेन्यू अगर नहीं मिल रहा था तो बैंक्स और फिनटेक कंपनीज भी इसके अडॉप्शन में इतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज बिना रेवेन्यू के आप कितना इन्वेस्ट करेंगे कोई इस चीज को बढ़ाने के लिए। तो इस मूव से बहुत बढ़ोतरी होगी डिजिटल पेमेंट्स की भारत में। आज भी 1.4 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, 800 मिलियन से ज्यादा बैंक अकाउंट है इंडिया में, बट करीबन 250 से 300 मिलियन इंडियंस ही अभी भी डिजिटल पेमेंट्स यूज करते हैं। तो अभी हमें 250 मिलियन से ये नंबर 500-600 मिलियन तक ले जाना है, और इस तरफ बढ़ने के लिए इस टाइप के स्टेप्स आरबीआई ने और एनपीसीआई ने जो लिए हैं ये बहुत ही बढ़िया है सबके लिए, यूजर्स के लिए, दुकानदारों के लिए और पेमेंट प्लेयर्स के लिए, सभी के लिए, इकोसिस्टम के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया उपासना। और अब बारी भौचक की, आ गए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी।
ये आवाजें जो आपने सुनी, आपको क्या लगा, कोई गाना है या कोई धुन? नहीं, ये लोगों के नाम हैं। आमतौर पर लोगों की शिनाख्त, उनकी पहचान या तो उनका चेहरा होता है या फिर उनका नाम। हाँ, ये दीगर बात है कि गुलजार साहब ने तो ये भी कहा है कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, लेकिन उसे रहने देते हैं। हम सब अपने अपने नामों से ही पुकारे जाते हैं और पहचाने जाते हैं। लेकिन आज की भौचक खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे सुरीले गांव के बारे में जहां लोगों का नाम धुनों में रखा जाता है, और ये नाम रखती है उनकी माँ। सुनिए कुछ सुरीले नाम, नामों का शॉर्टकट वर्जन भी है और पूरा नाम भी। ये जगह है हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में मेघालय का एक गांव जिसका नाम है कोंग थोंग। इस गांव को विस्लिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है और यहां की ये खूबसूरत प्रथा पूरी दुनिया में मशहूर है। इस सुरीले गांव में होता यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसकी पैदाइश पर एक छोटी सी धुन बनाती है और वही धुन उस बच्चे का पारंपरिक नाम बन जाता है। बाद में उसका दूसरा नाम भी रखा जाता है हमारी आपकी तरह, लेकिन इनके स्थानीय त्योहारों में या किसी कार्यक्रम में या फिर जब माँ को अपने बच्चे पर बहुत प्यार आए तो वो उसे उसी सुरीले नाम से पुकारती है ना खूबसूरत। सुनिए कुछ और नाम। हमारा देश ऐसी तमाम भौचक खबरों से भरा हुआ है। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो।
बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद। आज के दिन भर में इतना ही। बाकी बुधवार को आज तक रेडियो के ट्विटर हैंडल पर बेबाक बुधवार की बैठकी लगती है 9:00 से। तो आइएगा आप भी। हमारा टेक वाला पॉडकास्ट भी आता है आज, उसे भी सुनिएगा। और कुछ कहना सुनना हो तो मेल कीजिए radio@aajtak.com पर। व्हाट्सएप नंबर है 9953233303। इसी के साथ आप सबसे विदा लेने का वक्त है। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने, नितिन ठाकुर के साथ थे आप। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।